करण बीत राग विज्ञान नमो ताई जाति भई अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जन सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, सभी लोगों ने पिछले कई दिनों एक साथ मिल बैठकर अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर बहुत प्रकार से विचार किया है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि उस प्रक्रिया से गुजरते हुए हमने अपने जीवन में जरूर परिवर्तन महसूस किया होगा और आगे भी हम अपने जीवन में जो बेहतर परिवर्तन हम स्वयं महसूस करते हैं उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। हमारे पूरे जीवन को संस्कृति और सभ्यता, ये दो चीजें प्रभावित करती हैं। हम जो सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वो हमारी संस्कृति है और उस सोचे हुए विचार किए हुए को अपने जीवन में अमल में लाते हैं वो हमारी सभ्यता है। यदि संस्कृति और सभ्यता ना हो, संस्कृति ना हो, तो मनुष्य और पशु के सोच में अंतर नहीं रह जाएगा। और यदि सभ्यता ना हो तो मनुष्य और पशु का रहन सहन एक जैसा हो जाएगा। मनुष्य है तो वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को, दोनों को बरकरार रखता है। सभ्यता हमें चार लोगों और समाज के बीच में भला जीवन जीने की प्रेरणा देती है। संस्कृति हमें अपने घर में भला जीवन जीने की प्रेरणा देती है। कुछ लोग सिर्फ सभ्य होते हैं, वे सुसंस्कृत नहीं होते, तो उनकी घर गृहस्थी का निर्माण वे ठीक से नहीं कर पाते हैं। बाहर के लोगों के बीच वे बहुत अच्छे और ठीक माने जाते हैं। ऐसा संभव है? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि बहुत से लोगों को अपन ने कहते देखा होगा कि बेटा और बेटी दोनों को समान मानना चाहिए, स्त्री और पुरुष को समान मानना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हुए बाहर सुना होगा। लेकिन वे लोग अपने घर में अपनी बेटी को अपने बेटे से थोड़ा कम दर्जा देते हैं, अपनी जीवन साथी के साथ समान व्यवहार न करके और विपरीत आचरण करते हैं। भले ही वे समाज के बीच सभ्यता की बातें करते हैं और सभ्य माने जाते हैं, लेकिन अपने घर परिवार के बीच उनके अपने सुसंस्कार नहीं है। हमारे जीवन को संस्कृति आत्मविकास की चेतना देती है और जिसका जितना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा वो व्यक्ति लोगों के बीच उतना ही सभ्य होगा। और जो बिना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के और सिर्फ बाह्य सभ्यता को अपने जीवन में ओढ़ लेगा उस व्यक्ति का उतना विकास नहीं हो सकता। जिन देशों में सभ्यता है संस्कृति नहीं है उनकी चेतना विकसित नहीं होती, उनके बाह्य भौतिक सुख सुविधाएं और बहुत सी चीजें देखने में आती हैं, वे बहुत भले और सभ्य जान पड़ते हैं लेकिन उनकी चेतना का विकास नहीं।
ये महाराज जी ने
भारतीय संस्कृति आत्म विकास की चेतना उत्पन्न करने की संस्कृति है, चाहे बालक का निर्माण करना हो, घर गृहस्थी का निर्माण करना हो, चाहे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना हो, निर्माता को संतुलित होना बहुत जरूरी है। संस्कृति हमारे जीवन को संतुलन सिखाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं, मैं बहुत दूर नहीं ले जाऊंगा इस बात को, मैं ले जाना चाह रहा हूं आज वर्तमान में हमारी आने वाली पीढ़ी को हम संस्कार और सभ्यता में से किस चीज को दे रहे हैं, सिर्फ सभ्यता दे रहे हैं या कि संस्कृति और संस्कार दे रहे हैं, और देना चाहिए तो किस तरह देना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने जो अपनी पीढ़ी को आगामी पीढ़ी को संस्कारित करने की बात कही है वो क्या क्या बातें हैं जो कि आने वाली पीढ़ी को अपने बच्चों को संस्कारित करने में मदद कर सकती है, और इतना ही नहीं हमारे व्यक्तित्व को भी हमारी चेतना को भी ऊंचा उठा सकती है। एक फिल्म आई थी बहुत पहले जिसमें सज्जनता और दुर्जनता के बीच घात प्रतिघात उनके बीच एक लड़ाई दिखाई गई थी और पूरा हाल खचाखच भर जाया करता था, और जब कभी सज्जनता पर चोट होती थी तो सारी सभा में सन्नाटा खिंच जाता था, सारे लोगों की सांस रुकने लगती थी, सज्जनता हारती दिखाई पड़ती थी तब तक, और जब जब भी सज्जनता की जीत होती थी सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता था, सारे चेहरे जो कि अभी कुछ देर पहले गमगीन और उदास थे वे एकदम प्रफुल्लित और प्रसन्न दिखाई पड़ते थे, और इतना ही नहीं जो लोग समाज में दुर्जन माने जाते थे वे भी उस हाल के भीतर जब जब सभ्यता और सज्जनता की जीत होती थी तो बहुत प्रसन्नता और सराहना अपनी जाहिर करते थे। इससे मालूम पड़ता है कि हमारी आत्म चेतना कितना भी बाहर अंधकार हो वो प्रकाशित बनी रहती है, ये जो सिखाता है वो संस्कृति कहलाती है। हम कभी तो कितने भी दुष्ट हों लेकिन हमेशा भलाई की ही प्रशंसा करते हैं, हम कितने भी बुरे हों अपने आचरण में अपने जीवन में कितने भी पतित हों लेकिन हमारे भीतर हमेशा प्रशंसा अच्छाई और भलाई की ही होती है। इसके मायने हैं कि हमारे भीतर अभी ही वो संस्कार कायम है, वो जो आत्म चेतना के विकास की बात है वो हमारे भीतर अभी भी है, बस उस चीज को हम कैसे ट्रांसफर करें, आने वाली पीढ़ी को कैसे दें, इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और इतना ही नहीं अपनी उस संस्कृति को हम अपने उन संस्कारों को कैसे अपने भीतर डेवलप करें, कौन नहीं चाहता कि उसका घर और उसके अपने परिवारजन बहुत मधुर और बहुत उज्जवल और बहुत आनंदपूर्ण जीवन न जिए, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। हमारा स्वयं का जीवन, हमारे आसपास का परिवेश, हमारे घर का वातावरण सब बहुत मधुर बहुत उज्जवल और बहुत आनंदपूर्ण हो, इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर स्वयं संस्कारों को अर्जित करें और उन संस्कारों को अपने आसपास बिखेरें। ये प्रक्रिया सबसे ज्यादा निर्भर करती है मां के ऊपर, पिता का भी उसमें हाथ है लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है इसमें मां की। वो एक बालक को अपने अंदर 9 माह तक रख करके और उसके बॉडी कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है। इतना ही नहीं, एक संस्कारवान चेतना को आमंत्रित करना है इसके लिए भी उसे तैयारी करनी पड़ती है। या कि जब वह आत्मा हमारे कांटेक्ट में आ गया है, हमारे संपर्क में आ गया है, तब उसे किस तरह से संस्कारित करना, ये जिम्मेदारी भी उसी की है। दो जिम्मेदारी है, संस्कारवान आत्मा को इनवाइट करना। हाँ, आप क्या सोच रहे हैं कि हम जो हमारा अपना भाग होता है वैसी संतान पाते हैं? नहीं, हम अपने पुरुषार्थ से जैसी हम चाहते हैं वैसी पा सकते हैं। तीर्थंकर को उत्पन्न करने वाली माँ को एक जीवन नहीं, कई कई जीवन साधना करनी पड़ती है इस बात के लिए कि कोई ऐसी संस्कारवान आत्मा हमारे संपर्क में आए जिससे कि हमारा जीवन भी और अत्यंत ऊंचाई को छू सके। तीर्थंकर की माँ 2-3 भाव में मोक्ष नियम से चली जाती है, वो भी अपने चेतना का। ध्यान रखें, संस्कृति हमें चेतना के उस अंतिम छोर तक पहुंचाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है तो उसकी चेतना का परमात्मा बन जाना, और सबसे बड़ा पतन है मनुष्य का तो यही कि अपनी देह तक ही सीमित रह जाना। संस्कृति हमें देह से ऊपर उठा करके देहातीत बनने के लिए एक संस्कार देती है, और अगर ऐसी आत्मा जो कि देह से देहातीत होने के लिए हमारे संपर्क में आवे, उसके लिए हमें कितनी तैयारी करना पड़ेगी। एक खेत जोतने वाले किसान को भी खेत की घास फूस हटाना पड़ती है और जमीन को मुलायम करना पड़ता है, तब आकर के और बीज फलवान होता है। हमें भी इतनी ही तैयारी करनी चाहिए। हमें कैसे संस्कार देना है और कैसे संस्कार वाली आत्मा को इनवाइट करना है, ये दोनों चीजें हमारे अपने ऊपर निर्भर करती हैं। माँ का अपना रहन सहन, माँ का अपना खान पान, माँ का अपना सोच विचार, इतना ही नहीं माँ की अपनी हैबिट, और इतना ही नहीं माँ की अपनी डिजीज, माँ के अपने रोग शोक, वो सब ट्रांसफर होते हैं जिस आत्मा के जो आत्मा संपर्क में आती है, जिस बालक को हम जन्म देते हैं उसमें सब कुछ ट्रांसफर होता है। कुछ तो वो अपना भी लेके आता है, 50% ये भी रहता है, गड़बड़ाना नहीं। सूत्र जी का सूत्र है, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, एक जीव दूसरे के सुख दुख में मरण और जन्म में हेल्पफुल है, निमित्त बनता है। एक द्रव दूसरे का कुछ नहीं करता, ये बिल्कुल जुदी बात है। नहीं तो आप ये सोचें कि ऐसे कैसे वो जो अपने कर्म लेके आएगा वो करेगा, हम क्या कर सकते हैं उसमें? ऐसा नहीं करना। इतना ही सा नहीं है धर्म का, वो एक पहलू है, हमें उसके दूसरे पहलू को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आचार्य महाराज को जिन माँ ने जन्म दिया उन माँ के बारे में मालूम है? एक उदाहरण यहीं का ले रहा हूं मैं, इसलिए हमारे आचार्य महाराज का जन्म देने वाली माँ ने 2-3 वर्ष पहले से त्याग तपस्या और भगवान की पूजा अर्चना, मुनि जनों की सेवा करना, यहाँ तक कि उन्होंने स्वप्न में भी चारों रिद्धिधारी मुनियों को आहार दिए हैं, इस तरह का स्वप्न देखा। मनी वसे स्वप्ने दिसे, मराठी की कथा है, कहावत है, जो मन में बसता है वो स्वप्न में दिखता है। उनके मन में एक ही चीज बसी थी, मुझे ऐसे बालक को जन्म देना है जो कि अपना और मेरा भी कल्याण कर देवे। जन्म तो देना है मुझे बालक को ताकि मेरी आगे परंपरा चले, इसीलिए तो मैंने जाहिर किया है। जो भी गृहस्थी शुरू करता है उसके भीतर कॉन्सेप्ट क्या होता है, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन एक ऐसे बालक को जो कि सपर कल्याण कर सके, अपना भी अपनी भी चेतना को इतना संस्कारित करे और उसके साथ साथ मैं भी अपनी चेतना को संस्कारित कर सकूं, अगर ऐसी भावना से हम संस्कार देते हैं तो हम जरूर से आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय कर रहे हैं, अन्यथा हम आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ये हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। बालक को आज हम सबसे पहली चीज की संस्कारित करने के लिए बहुत बाद में सचेत होते हैं, जबकि बात हमारे हाथ से निकल जाती है। साइकोलॉजी में लिखा है कि वो जो 9 माह और जन्म लेने के बाद 6 माह, इन 15 माह में जैसा भी आप कंस्ट्रक्ट करना चाहें, गीली माटी है, जो शेप देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद 6 महीने से 6 बरस तक थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। 6 महीने के बाद हाथ लगाएंगे जहां वहां से टूटने की संभावना है या कि फोल्ड आ जाएगा तो वो जिंदगी भर रहेगा, वो ऐसा परिभाषित करते हैं उसको। और ये प्रक्रिया इतनी डेलिकेट है, इतनी केयरफुली हैंडल करने वाली प्रक्रिया है कि बाद को फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। आज हम देख रहे हैं इस प्रक्रिया के बारे में हम कितने अधिक सोए हुए हैं। हमें थोड़ा सचेत होना चाहिए। हमारे मन में, हमारे अपने कल्याण के साथ साथ जो हमारे संपर्क में चेतना आई है उसके भी कल्याण की बात होनी चाहिए। सबसे पहली चीज हम उसके पालन पोषण को अपना कर्तव्य मान करके करें, अपने ऊपर आई हुई बलाएं मान करके ना करें। यह जो एक धारणा हम लोगों की है, हम ज्यादा नहीं पाल सकते, बहुत है हमारे लिए, एक दो बहुत है, हम कहां तक करेंगे, ये सब हमसे नहीं सहा जाता, हमसे नहीं होता ये सब। और फिर 2.5 साल के, 3 साल के बच्चे को और आया के जिम्मे सौंप करके, स्कूल भेज करके अपन मुक्ति का अनुभव करते हैं। क्या यही हमारे पालन पोषण और संस्कारित करने की प्रक्रिया है? अगर ऐसी है तो फिर हमें अपनी आगामी पीढ़ी के पतन से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका उपाय हमने स्वयं कर दिया है। जबकि उसे आपका संपर्क चाहिए था तब आपने उसे अपने संपर्क से दूर कर दिया है। शुरुआत में संपर्क बहुत जरूरी है। एक सर्वोत्तम रीडर डाइजेस्ट में बहुत बढ़िया लेख निकला था, 81 के लगभग की बात है। उसमें उन्होंने लिखा था कि वो जो बेटा एक मां के भीतर अपना शरीर बनाता है, वो वहां जब थोड़ा चेतनावान होता है, जब थोड़ा समझ उसके भीतर आती है, तब वो आवाजें सुनता है विभिन्न प्रकार की। सबसे निकट उसे अपने मां की आवाज सुनाई पड़ती है और वो लालायित होता है कि ये कौन बोल रहा है, ये बार बार कौन बोलता है, मैं उसे देखना चाहता हूं। और जैसे ही वो बाहर आता है और मां की आवाज सुनाई पड़ती तो सबसे पहले उसी तरफ देखता है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा कांटेक्ट उसी से, किसी को नहीं पहचानता वो, लेकिन मां की आवाज सुनते ही उस तरफ देखने लगता है कि ये तो वही है जिसकी आवाज मैं भीतर सुनता था, यही इतना उसका कांटेक्ट रहता है। ये उसमें एक रिसर्च पेपर था और इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। उनने लिखा था कि इसका लाभ उठाएं, हम जैसा सोचेंगे वह भी वैसा ही सोचेगा। उस समय तक जैसा हम खाएंगे पिएंगे, जैसा हम हाथ चलाएंगे, हम आंख ऐसी मीचेंगे, वो भी ऐसे ही करके बता देगा। हाँ, इतना कांटेक्ट रहता है, लेकिन आज हम उस कांटेक्ट को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? क्या हम उसके साथ माने न्याय कर रहे हैं? ये जो 3 साल के बच्चे को नर्सरी भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा करके एक बार पुनः विचार करना चाहिए। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगे ये भी आपकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं। मेरा तो सिर्फ काम यह है कि जहां आचार्य भगवंतों ने, उन्होंने तो 1.5 महीने के बाद क्या करना चाहिए ये लिखा है, मैं तो फिर भी 3 साल के बाद की बात कह रहा हूं। 53 क्रियाएं दी हैं, गर्भान्वय क्रिया से दीक्षान्वय क्रिया और आरत क्रिया तक लेकर के 53 क्रियाएं दी हैं। उन सब पर कभी विचार करेंगे। आज तो उतना मैंने तैयार भी नहीं किया, मैं तैयार भी नहीं उस चीज के लिए। बहुत संक्षेप में आपसे बात करूं, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज है कि उन्हें हम पर्याप्त समय दें। आज हमारे पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। उनके साथ मिल बैठ करके थोड़ी देर बच्चा बनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम हमेशा उनके साथ बड़े ही बन के रहना चाहते हैं, पर वे चाहते हैं कि कुछ देर हमारी माँ हमारे जैसा बनकर हमारे साथ रहे। इसके लिए हमारे पास समय है, घंटे भर भी नहीं है। बचपन में हम सोए रहते थे और माँ झाड़ू लगा करके और पाठ करती थी, 12 भावना का पाठ करती थी। मुझे वो 12 भावना मैंने कभी नहीं पढ़ी। 22 साल की उम्र में जब आचार्य के चरणों में जाकर के दीक्षा ली और पहले दिन जब राजा राणा चक्रवर्ती पढ़ी, राजा राणा छत्रपति ये वाली नहीं, वो कहां गए चक्री जिन जीता, वो मंगत राय की 12 भावना जब आचार्य ने सब पूरे संघ ने पढ़ी तो मैंने भी साथ में पढ़ी। फिर मैं सोचता रहा कि मैंने ये कब और कहां पढ़ी, मैंने तो कोई किताब में पढ़ी नहीं कभी, तो मैंने कहां पढ़ी। फिर बहुत रिकॉल करने पर मुझे याद आया कि अरे जब मैं सोया रहता था सुबह सुबह, आधा जागा आधा सोया इस बात के इंतजार में कि कब प्लेट बजने की आवाज आए तो उठूं, चाय बन गई, ऐसे तो पड़े रहूं। उस समय मां बोलती थी तब ये मेरे अनकॉन्शियस में फील होता। मां रात में सोने से पहले पुराण बांधती थी, वो आज भी मुझे मेरी चेतना में है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जितना ज्यादा हम समय देंगे अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए, पैर दबवाते समय मां पूछती थी कि तुम्हारे कितनी इंद्रियां हैं, हम कहते हमें नहीं मालूम, पैर दबवाना हो तो दबवा लो, ये सब हमको नहीं मालूम। अरे तुम बताते तो हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम तुमसे नहीं बनेगा तो हम कुछ कहेंगे। अच्छा तुम्हारी आंख है, हाँ है, तो वो एक इंद्रिय है। अच्छा अब हो गया पैर, हमारे दब गए आपके पैर, अब जाएंगे। अरे ठहरो तो, वो कान भी तो एक इंद्रिय है। हाँ कान भी है, ठीक है सीख लिया, दो सीख ली बस, बहुत हो गया। ऐसे करते थे लेकिन वो प्यार से, फिर और फिर नाक भी तो है और फिर जीभ भी तो है और तुम छू करके भी जानते हो। हाँ जानते हैं, जाओ बस यही 5 हैं, जल्दी भागो, ये 10 पैसे लो जाओ। अब कल आएंगे तो वो 5 दिमाग में रहेंगी, 5 इंद्रियां फोकट में आग हो गई। जिंदगी भर ऐसे हम जो चाहें, अब हम फिल्मी गीत गुनगुनाएंगे 2 साल के बच्चे के सामने तो वो फिल्मी गीत बड़े होके गुनगुनाएगा। नहीं, बात बहुत नेचुरल सी चीज है, बात कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, ये बहुत सहज है। और ये हम सहजता में उसको बहुत सी चीजें सिखा देते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि हमने क्या सिखा दिया, हमने तो ये सिखाया नहीं था और कैसे सीख गया। ये शुरुआत में बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि हम उसे समय दें और उसे सिखाएं, वो बातें सिखाएं जो हम उससे अपेक्षा रखते हैं। हम उन बातों को नहीं सिखाएं जिसकी हम उससे अपेक्षा नहीं रखते, वरना कल के दिन जब उसके भीतर जो बातें देखने में आएंगी जिनकी हमें अपेक्षा नहीं थी तो हम दुखी होंगे। तब फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे वे बातें सिखाएं ही क्यों, हम उसे समय देकर के वे बातें सिखाएं जो हम उससे अपेक्षा रखते हैं। और फिर कह रहे हैं कि उसकी भावनाओं को समझें। हम बच्चों की भावना नहीं समझते हैं, वे क्या चाहते हैं। वे जब कहते हैं तब हम उसका अपोज तो कर देते हैं कि तुम्हें ये ठीक नहीं। हम उनकी भावना समझें, और अगर उनकी भावना ठीक नहीं है तो हम उन्हें समझा करके उनकी भावना में परिवर्तन लाएं। ये हमारा काम है, पर पहले उनकी भावना का सम्मान करें। छोटे छोटे बच्चे बाहर से कंकर पत्थर चमकीले बीन के लाते हैं, कुछ सीप बीन के लाते हैं, कुछ कचरा वचरा, कुछ टुकड़े पत्थर के वो ला करके एक जगह रखते हैं। हमें लगता है ये घर में गए को कचरा फैला है, चलो खाली करो, फिर क्या बाहर क्या रखा हुआ है। वो कचरा नहीं है बाबा, वो आपको कचरा लग रहा है, वो उनकी संपत्ति है। कल के दिन वो भी कह सकते हैं कि तिजोरी में ये का भर के रखा कचरा, वो भी बड़ा कचरा है, हमारा छोटा कचरा है, आपका बड़ा कचरा है। लेकिन आप ये देखें कि वो किस तरह चीजों को संभाल के रखना सीख रहे हैं। सवाल ये है, भले ही वो अभी नहीं जानते हैं कि ये चीजें संभालने की है या नहीं है, ये तो पत्थर है, इसको क्या संभालना, पर वो संभालना सीख रहे हैं। हम उनके उस संभालने की आदत का सम्मान करें। जब छोटी सी गुड़िया लाकर के और अपनी गुड़िया की गोद में दी जाती तो पैर हिलने लगता, उसको थपकी देने लगती है, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि ये पालन पोषण इसके भीतर है, ये किसी को संभाल लेगी आगे जाकर के, उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी भावनाओं का सम्मान। चलो क्या है, लेकर के बैठी हो तुम, उसको पढ़ो लिखो और हटाओ, उसको धर दो वहां पर, खेल लिया बहुत हो गया, ये नहीं, ये नहीं। अभी उसकी भावनाएं उसको संभालने की है, तो आप उसका सम्मान करें। और फिर जब वो संभाल चुके, अच्छा अब उसको सुला तो दो गुड़िया को, सो गई वो, अब तुम थोड़ा पढ़ लो, नहीं तो वो जाग जाएगी तो फिर पढ़ नहीं पाओगे। अब बताइए क्या है ये, आप बच्चे बन गए उसके साथ में, सुला दो तो जल्दी से पढ़ लो। ये चीजें हैं, ये चीजें ऐसी नहीं आएंगी, बहुत गौर से इन पर विचार करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि मैंने तो गृहस्थी करी नहीं, मैंने बच्चों को पाला पोसा नहीं, लेकिन मुझे आज भी इस बात का सौभाग्य है कि मैं किसी को भी बेटा कह देता हूं तो वो मान लेता है। मैंने उसे जन्म नहीं दिया पर फिर भी मेरे पास उसे बेटा कहने का अधिकार प्राप्त हो गया, ये कैसे हो गया होगा, फोकट में हो गया होगा, वो बुरा नहीं मानता, वो बड़ा सारा होने के बावजूद ही बुरा नहीं मानता, ये क्या चीज है। ये उसकी भावनाओं का सम्मान करना है। हम उसकी भावना का सम्मान करते हैं तब फिर वो हमारी हर चीज को सहज स्वीकार करता है। हम आज बच्चों की भावना न समझ करके उनकी भावना का सम्मान नहीं करते, कल के दिन जब वे हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते तो हम दुखी होते, जबकि हमने उन्हें परस्पर एक दूसरे की भावना का सम्मान करना सिखाई नहीं। फिर हम अनुशासन करें, जरूर करें उन पर, उन्हें खाली छोड़ना दें, जाओ तुम्हें जैसा करना हो, ऐसा नहीं। जब तक वे परिपक्व नहीं हुए हैं तब तक उनके ऊपर अनुशासन हो। कौन सा वाला अनुशासन, वैधानिक नहीं, आत्मीय अनुशासन, प्रेम का अनुशासन, वो बहुत जरूरी है। एक ऐसा अनुशासन जो कि बहुत प्रेमपूर्ण हो। कौन है यहां पर, बच्चन ने लिखा, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलार लो, इसलिए